فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ہے ہمارے سینے کھلے ہوئے؟ دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے سینے کھول دے. سینے کا کھلنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جو بات سنے اس کو ماننا آسان ہو جائے. ہم شروع سے بچپن سے جن گھرانوں میں پیدا ہوئے وہاں پہ ہم دین کی باتیں سنتے سناتے آ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں دانستہ یا نادانستہ یہ باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی؟ اس کی وجہ یہ کہ سینہ گھٹا ہوا ہے. آپ سینے کے گھٹنے اور بھٹنے کو دیکھیے کہ آپ اس کے اندر محسوس کر سکتے ہیں. کسی بھی ہارٹ پیشنٹ کو, اللہ نہ کرے کہ کسی کو اگر دل کی بیماری ہے, تو آپ اس شخص کو ذرا تصور میں لائیں. ایک صحت مند دل والا انسان اور ایک بیمار دل والے میں کیا فرق ہے؟ صحت مند خوب بھاگ سکتا ہے, بیمار بھاگ نہیں سکتا. صحت مند جو چاہے کھا سکتا ہے, بیمار ہر چیز نہیں کھا سکتا. صحت مند شخص جو ہے وہ کھانا کھاتی, اگر کبھی سو بھی جاتا ہے یا کوئی اس کو کوئی دوسرا کام کرنا پڑتا ہے تو اس کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا. جبکہ بیمار دل والا شخص جب کھانے کے فوراً بعد کوئی اور کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے. بالکل یہی دو کیفیات سامنے رکھیے. ایک شخص ہے جس کا سینہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ کھل گیا, وہ صحت مند دل رکھتا ہے. اور دوسرا جس کا دل گھٹا ہوا ہے, دونوں میں فرق وہی ہے جو بیمار اور صحت مند دل والے کا ہے. وہ ہر حکم پہ عمل کرے گا, یہ سوچ کے کرے گا کروں کہ نہ کروں. یہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے لے گا جس سے کوئی عمل میں رکاوٹ نہ پڑے, لیکن وہ باتیں جس سے عمل میں رکاوٹ پڑے چھوڑے گا. آپ اپنے نوٹس میں لائن لگا کے بعد میں لکھیں, کیا میرا سینہ گھٹا ہوا تو نہیں؟ کیا میں دل کی بیمار تو نہیں ہوں؟ کیا میں ہارٹ پیشنٹ تو نہیں ہوں؟ کیا جب بھاگ بھاگ کے نیکیوں کی طرف جانا چاہتی ہوں تو سانس تو نہیں پھولتا؟ جب دین کے بوجھل احکامات آتے ہیں تو سانس تو نہیں رکنے لگتا؟ کیا جب خواہشوں پہ پابندی لگتی ہے تو کیا مجھے زندگی بوجھل تو نہیں لگتی؟ اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسے بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز چڑھ کر گئی. یعنی جیسے ہارٹ پیشنٹ جو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا نا, اس طرح سے شخص کو دین کی باتیں بڑی مشکل لگتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے سینہ گھٹنے لگا. اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں کے دلوں میں مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے, حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. کیا ملتا ہے نصیحت قبول کرنے کے بعد؟ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے, وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. یہ ہے سلامتیوں کا گھر. انسان دنیا میں سلامت رہنا چاہتا ہے نا, بچا بچا کے خود کو رکھتا ہے, دل کو بچاتا ہے ہر چیز کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں سلامتی ہے ہی نہیں. دیکھیے ایک چیز جو دنیا میں ہم ڈھونڈتے ہیں نا, وہ دنیا کی ہے نہیں. اور وہ کیا ہے؟ سکون, سلامتی, اطمینان, خوشی. یہ سب کچھ کہاں رکھا ہے اللہ نے؟ دار السلام میں. یہ دنیا ہر دن بنتی ہے اور ہر دن ٹوٹتی ہے, سچ. آپ گھر صاف کرتے چند گھنٹے بعد گندا, نہا دھو کے صاف کپڑے پہنے پھر گندے. صحت مند تھے ایک بیماری سے بچ گئے, کسی اور بیماری کا شکار ہو گئے, یہاں تو نہیں بچیں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک پکار لگے گی, آج کے بعد کوئی بیمار نہیں ہوگا, سب صحت مند رہیں گے. انسان چاہتا ہے میں بوڑھا نہ ہوں, یہاں تو ہو کے رہیں گے. جتنی مرضی خوراک کھا لیں, جتنے مرضی چیک اپ کروا لیں, جتنی مرضی علاج کروا لیں, بوڑھے تو ہوں گے. اور جنت میں پکار لگے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے. کسی کو وہاں تھوک نہیں آئے گا, پیشاب اور پخانے کی حاجت نہیں ہوگی, موت نہیں آئے گی. یہ دنیا تو ہے ہی نہیں اس طرح کی جیسی بنانا چاہتے ہیں. جو لوگ سب کچھ دنیا میں لینا چاہتے ہیں اور اس قیمت پہ کہ اللہ ناراض ہو, تو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا تو کبھی جنت نہیں بنے گی. دعا کریں کہ اللہ ہمیں دار السلام میں جگہ دے دے. یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا نام السلام ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپا گئے, जिन्होंने उस दारुस्सलाम को पाने की बजाय ख़ुद को इस दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दिया, ऐसे लोगों का क्या हशर है। वह यौम यख्शुरुहुम जमीया, जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, और उस रोज़ वो जिन्नों से यानी शयातीन जिन्नों से खिताब करके फरमाएगा कि गिरोहे जिन, तुमने तो नौ इंसानी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो इनके रफीक थे वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है, अब हम उस वक्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे, इससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा, बेशक तुम्हारा रब दाना वलीम है। देखो इस तरह हम आखरत में जालमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, उस कमाई की वजह से जो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर किया करते थे। इस मौके पर अल्लाह ताला इनसे ये भी पूछेगा, ऐ गिरोह जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से कोई रसूल ना आए थे जो तुमको मेरी आयात सुनाते और इस दिन के इंजाम से डराते। देखिए यहाँ जिन्नों और इंसानों दोनों की बात है, उनसे पूछा जाएगा, और सूरत मुल्क में हम पढ़ेंगे कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था जो तुम्हें आगाह करता, जो तुम्हें बातें बताता? तो वो कहेंगे, कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह ताला आया तो था लेकिन हमने नहीं माना। हम भी अपने आप से सवाल करें, क्या हमें अल्लाह की किताब का पैगाम पहुँच गया? क्या हमने अल्लाह की बात को सुन के अब अमल करने का इरादा कर लिया? अगर नहीं किया तो ऐसा बुरा अंजाम जिसकी बात अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, वो कहेंगे हाँ हम अपने ख़िलाफ़ खुद गवाही देते हैं। यानी सारी ज़िंदगी खुद को पूछते रहे, इस नफ्स की पूजा करते रहे, और कल गवाही देंगे कि अल्लाह हमने इस जिस्म को मोटा किया। आपको पता है कि क़यामत के दिन हमारा जिस्म हमारे ख़िलाफ़ गवाहियाँ देगा, ये हाथ, ये आँखें, ये स्किन, ये हमारी रान बोलेगी कि अल्लाह इसने मुझे बहुत मिसयूज़ किया। उस वक्त इंसान हैरान हो जाएगा कि क्या तुम बोल रहे हो मेरे ख़िलाफ़, तुम्हें ही तो पालता रहा, तुम्हें ही तो पोसता रहा, तुम्हारे ही तो लाड देखता रहा, रूह के तकाज़ों को तो मैंने बहुत पीछे रखा हुआ था। वो कहेंगे हाँ आज हम बोलेंगे, तुमने हमारा हक अदा नहीं किया। वजह क्या होती है, कब इंसान रूह के हक को भूलकर सिर्फ बदन के हक पूरे करता है? उसकी वजह है वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का धोखा। मुझे यहाँ रहना है, हमेशा रहना है, और ऐसा शख्स फिर अपने आप को इस तरह से कर लेता है कि क़यामत के दिन खुद अपने ख़िलाफ़ गवाह होगा। ऐसे लोग अल्लाह की निगाहों में काफिर थे, ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म से तबाह करने वाला न था, जबकि इसके बाशिंदे हकीकत से नावाकिफ हों। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा यामलून, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, दुआओं के लिहाज से नहीं है, अमल ख्वाहिशात के हिसाब से नहीं है, अमल के हिसाब से है। ज़रा अपना हिसाब करें, मेरा आखरत में क्या दर्जा होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी भी कि नहीं, मैं जन्नत के किस ग्रेड पे होंगी, मुझे कितने स्टार वाली जन्नत मिलेगी, 5 स्टार, 10 स्टार, 12 स्टार, और जन्नत के 100 स्टार हैं, 100 दर्जे हैं, सबसे आला दर्जे वाला ऐसे होगा कि जैसे 14वीं का चांद चमकता है। ये कब मिलेंगे दर्जे? तमन्नाओं से नहीं, कोशिश से। दुनिया में कैसे मिलते हैं दर्जे? आप में से जिन साथियों ने मास्टर्स किया है, कैसे मिला ये डिग्री? ऐसे मिल गई, ख्वाहिश रखते थे कि हाय मास्टर की डिग्री चाहिए, घर में आ गई, मेल में तमन्ना की, आ गई, नहीं हुआ ना, कोशिश करते हैं ना। आज जो डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से है ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। कभी मुश्किल लगे ना नेकी करना तो ख़ुद को लालच दिया करें, मैं पीछे रह जाऊँगी, मेरी देवरानी आगे निकल जाएगी, मेरी सास आगे निकल जाएगी, मेरी जेठानी आगे निकल जाएगी, और देखो मेरी तो नंद मुझसे आगे निकल जाएगी। वो रिश्ते जो आपको अगर थोड़ा सा चुभते हैं ना, उनका नाम लें। हालांकि ये सारे रिश्ते जिनका मैंने नाम लिए तो प्यार के रिश्ते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा तो तकाबुल दोस्तों में होता है, मेरी दोस्त आगे निकल जाएगी। लिख लिख के ख़ुद को यकीन दिलाया करें, ये मुहासबे में लिखें अपनी बातें, क्या मैं अपनी दोस्तों से पीछे रहना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरा महल मेरी दोस्त के महल से छोटा हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी तो आगे निकल जाए, उसका तो बहुत बड़ा विला हो और मैं जन्नत के किसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। दर्जे होंगे वहाँ हर एक की कोशिश, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। आज कोशिश कर ले, आज वक्त है, आज मेहनत है। भाग भाग के इस तरह भागे कि हाँपने लगे कि रब को आप पे प्यार आ जाए। थोड़ा सा सांस सीधा ले फिर चल पड़े, हिम्मत टूटने वाला ना गिरे, दोबारा से हौसले जमा करके उठने वाला गिरे, फिर देखें अल्लाह आपके अमलों को कैसे कबूल करेगा। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून। अमल अमल, आज हमारी उम्मत का रिवाज और कल्चर अमल से ज़्यादा दुआओं वाला बन गया। दूसरों से दुआएं करा लो, दुआ भी खुद नहीं करते। सुस्ती आ गई, या शायद सोचते हैं कि दूसरों को अल्लाह ने कोई ठेका दिया हुआ है दुआओं की कबूलियत का, उनसे कोई एग्रीमेंट किया हुआ है। नहीं, अल्लाह ना सुने तो नेक की ना सुने, और सुन ले तो फिरौन की और इबलीस की सुन ले। इस बात को सोचें, मेरा रब मेरे अमलों से गाफिल नहीं है। 3 बार अगर आप इसको दिन में किसी ऐसे वक्त में जब आप तन्हा हों खुद को कहलवाएं, आहिस्ता आहिस्ता, मेरा रब मुझसे गाफिल नहीं, मेरा रब मुझको देख रहा है, मैं अपने रब की नज़रों में हूँ। इस तरह खुद को एहसास दिलाएं, आप फील करेंगे कि आपको रब की निगाहें दिखने लगेंगी। कैसा है वो रब, व रब्बुकल गनीयुज़ुर रहमा, तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी इसका शेवा है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए, यानी तुम अल्लाह की ज़रूरत नहीं हो, और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह इसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया। तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है, यानी क़यामत दूर नहीं है, आके रहेगी। मत सोचो कि ऐसे ही रह जाएंगे, पता नहीं धोखा हो जाएगा, पता नहीं ये होगा वो होगा, क़यामत आएगी और तुम खुदा को आजिज कर देने की ताकत नहीं रखते। ए नबी, कह दो के लोगो, तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। देखिए, नबी भी अमल कर रहे हैं, वज़ाइफ नहीं कर रहे थे, अमल कर रहे थे। अमल के साथ वज़ाइफ फ़ायदा देंगे, और सिर्फ वज़ाइफ करके जन्नत ली जाए तो नहीं मिलेगी। पूरे कुरान और सुन्नत को टटोल लीजिए, कोई एक ऐसा वजीफ़ा नहीं मिलता कि ये वजीफ़ा पढ़ लो तो जन्नत मिल जाएगी, फिर तो सारी पहुँच जाते। तो हम अपने काम सिर्फ वजीफ़ों से करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, नहीं। अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इंजाम कार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। जालिम कौन होते हैं जो हक ना दें, अल्लाह का और बंदों का। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है अपने ज़ोम के मुताबिक, और ये खुद अपने ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों को पहुँच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। बहुत ही दिलचस्प आयत है, मुशरिकीन मक्का की कुछ बिदात का तस्करा। कुछ चीज़ें तो सूरत मायदा में हम पढ़ चुके और कुछ यहाँ आगे आने वाली हैं, सबका खुलासा कर लेंगे। पहले तो इस आयत को देखिए कि करते क्या थे, कि जब खेती में से फसल उगती तो उसके 3 हिस्से करते। एक हिस्सा अपने लिए रख लेते, ज़रूरियात ज़िंदगी और जो भी चीज़ें होती हैं अपनी ज़रूरत की। दूसरा हिस्सा रखते अल्लाह के नाम का। तीसरा हिस्सा रख लेते थे अपने बुतों के नाम का, देवियों के नाम पर, अपने खुदाओं जो भी उनके थे। अब होता क्या, तसव्वुर में लाए ज़रा, किसी का खेत है ए बी सी, ये 3 हिस्से हैं उसके। किसी साल ऐसा होता कि फसल इस तरह से उगती कि बी जो बुतों के नाम का था उसके अंदर फसल ना उगती, और अल्लाह वाले हिस्से में फसल बहुत उगती। अब क्या करते, कहते ओहो इसमें तो उगी नहीं, अब करें क्या। नहीं नहीं नहीं, बुतों को तो नहीं नाराज़ कर सकते, ये तो हमारे खुदा होते हैं। पकड़ के अल्लाह वाले खेत का हिस्सा अपने बुतों के नाम पे चढ़ा देते। और कभी इसका अपोजिट हो जाता कि बुतों वाले खेत में तो खूब सब्ज़ा उगता, खूब फसल उगती, और अल्लाह के नाम जो हिस्सा लगाया था उसमें ना उगता। तो कहते अल्लाह की खैर है ना, वो तो अपना। अच्छा, सुनते वक्त कैसे लग रहे हैं हमें ये बात, सुनते वक्त कैसे लोगों का तसव्वुर आ रहा है, बेवकूफ़, बुद्धू, नादान, खुशफहमी वाले। ज़रा ले आइए अपनी अमली ज़िंदगी पे, क्या मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये हिस्से नहीं बांधे हुए। बस ये इतना को अल्लाह के रास्ते में करते हैं। नहीं, अब हाथ तंग है आजकल। जब हाथ तंग होता है ना, जब मियाँ की जॉब जाती है, जब कोई मसला आता है, या आम दिनों में भी, सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी की कमी होती है ना, वो दीन की कमी होती है। इज़ इट ट्रू? हम सबसे ज़्यादा बोझल दिल से जो खर्च करते हैं, वो अपने दीन पे करते हैं। एक ही दिन में, एक ही वक्त में हम 500 खर्च करेंगे किसी खाने पे। चार लोग मिलके गए दावत पे, खाना खा के आ गए, और वही 500 अगर हमें कोई दीन की चीज़ के लिए इस्तेमाल करने पड़े तो मुश्किल लगते हैं। क्या आज हम भी ऐसे भोले तो नहीं हो गए कि अल्लाह के हिस्से तो दे रहे हैं और अल्लाह को उनके नहीं देते? अल्लाह ताला कहते हैं, ऐसे बुरे फैसले करने वालों को फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह कुछ और आगे इनकी बातें चलती जाएंगी।